दिन भर 13 फरवरी सोमवार, मैं हूं निखिल रंजन। अमेरिका की सबसे बड़ी बांध के टूटने का खतरा, शुरू हुई लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की मुहिम।
If that is not addressed and we don't take care of that and mitigate it properly,
तमिलनाडु में शशिकला और पनीर सेल्वम के बीच तीखी हुई जुबानी जंग, लेकिन गवर्नर अब भी चुप, क्या कहता है संविधान। उत्तराखंड की 70 और उत्तर प्रदेश में 67 सीटों के लिए थमा चुनाव प्रचार, चलेंगे मायावती की सीट रहे हरोरा का हाल जानने, 20 सालों में कितना हुआ काम।
किस टाइम मायावती मुख्यमंत्री थी, यहाँ पर बिजली घर भी बने, स्वास्थ्य केंद्र भी बने, डिग्री स्कूल भी बने, ये सब आस पास जो बने हुए हैं ये बहुत ही टाइम के बने।
आपकी चिट्ठियों के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ओरोविल बांध के पास रहने वाले करीब 2,00,000 लोगों को इलाका खाली करने को कहा गया है। बांध में ज्यादा पानी होने की वजह से इसके तटबंध के टूटने का खतरा बन गया था। बांध के जलाशय में पानी का स्तर कम करने का अभियान जारी है। कैलिफोर्निया के गवर्नर जे ब्राउन ने कहा कि स्थिति जटिल है और लगातार बदल रही है। राज्य के नेशनल गार्ड से तैयार रहने को कहा गया है। कीनिया में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों के 6 प्रतिनिधियों को 1 महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। नैरोबी स्थित हाईकोर्ट की जज हेलेन वाल्सीवा ने यूनियन के प्रतिनिधियों को अपने पूर्व आदेश की अवमानना का दोषी पाया। कोर्ट ने पहले के आदेश में बातचीत करने और हड़ताल वापस लेने को कहा था। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सरकारी अस्पतालों के कर्मचारी दिसंबर में हड़ताल पर चले गए थे। चिकित्सा अधिकारी कैरोलाइन मुथोनी ने जज के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा,
I think the judgment was not fair because I believe it was a legal strike.
मुझे लगता है कि यह फैसला निष्पक्ष नहीं है क्योंकि एक वैध हड़ताल है। सिर्फ मुद्दा इतना है कि यहाँ ऐसा नहीं होता, बातचीत रुकी हुई है। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। आप उन्हें जेल में नहीं डाल सकते हैं, उनके पास बाहर रहने का अधिकार है। वास्तव में ये संघर्ष अधिकार के लिए ही है। ये थे कैरोलाइन मुथोनी के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। साल 2007 से गजा पर नियंत्रण रखने वाले संगठन हमास ने यहया सनवार को गजा में संगठन का नया प्रमुख चुना है। उनका चयन आंतरिक चुनाव के जरिए हुआ। सनवार को संगठन के सबसे कट्टरपंथी लोगों में गिना जाता है। इसराइल ने साल 2011 में कैदियों की अदला बदली के दौरान उन्हें आज़ाद किया था। उनके चयन को संगठन में राजनीतिक शाखा के मुकाबले सैन्य शाखा के बढ़ते प्रभाव के तौर पर देखा जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के शरणार्थियों को दबाव और धमकी के जरिए वापस भेजने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई हज़ार शरणार्थियों को अफगानिस्तान लौटने के लिए मजबूर किया गया है। इसे शरणार्थियों को जबरन वापस उनके देश भेजने का सबसे बड़ा मामला बताया गया है। संगठन की वरिष्ठ शोधकर्ता पैट्रिका गॉसमैन ने कहा,
When you create conditions, as was the case in Pakistan, where people feel they have no choice but to leave.
जब आप ऐसी स्थितियां बनाते हो जैसे कि पाकिस्तान के मामले में देखा गया है, जहां लोगों के पास वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है, उनका लगातार उत्पीड़न होता है, उन्हें रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें जेल में डालने और वापस भेजने की धमकी दी जाती है, उनके व्यापारिक ठिकानों और घरों में छापे की कार्रवाई होती है, पाकिस्तान ने यही किया, इसलिए हम इसे शरणार्थियों पर गैर कानूनी तरीके से वापसी का दबाव बनाना कह रहे हैं। ये थे पैट्रिका गॉसमैन के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। AIADM के महासचिव शशिकला ने आज एक बार फिर दावा किया कि उनके पास 129 विधायकों का समर्थन है और वो सरकार बनाएंगी। उन्होंने बताया कि जयललिता का निधन हुआ तब ओ पनीर सेल्वम समेत पूरी पार्टी चाहती थी कि वो उसी रात मुख्यमंत्री बन जाए। शशिकला ने पनीर सेल्वम पर पार्टी को विभाजित करने की कोशिश का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 67 सीटों पर आज शाम प्रचार का शोर थम गया। विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर में यहां 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वहीं उत्तराखंड में भी विधानसभा की 70 सीटों पर 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। यहां भी चुनाव प्रचार थम गया है। उत्तर प्रदेश की 67 और उत्तराखंड की 70 सीटों पर प्रचार बंद होने के पहले सभी दलों के नेता जोर लगाते रहे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिन भर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर से, जो आ रही है अमरीका के कैलिफोर्निया से। यहाँ का ओरोविल बांध खतरे की जद में आ गया है। अमरीका की ये सबसे लंबी बांध है और पानी का स्तर बढ़ने के बाद बांध की दीवार में एक छेद भी हो गए, जिससे पानी का रिसाव शुरू हो गया। अधिकारियों को आशंका ये सता रही है कि कहीं बांध टूट न जाए। इसकी मरम्मत के साथ ही आसपास के इलाकों से लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया है और यहाँ काफ़ी अफरा तफरी है। सुनिए पूरा हाल फैसल मोहम्मद अली से।
अमरीका के कैलिफोर्निया में आपदा बचाव दल के लोग हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटे हैं। अमरीका की सबसे लंबी बांध ओरोविल के करीब रहने वाले 2 लाख लोगों को यहां से हटाया जा रहा है। ओरोविल बांध से पानी का रिसाव हो रहा है और ये आशंका पैदा हो गई है कि तेज बहाव के आवेग से बांध टूट जाएगी। बांध के नीचे मौजूद सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम हो गया क्योंकि निचले इलाके में रह रहे लोग ऊंची जगहों की ओर जा रहे हैं। यहाँ की जेल से भी कैदियों को निकाल कर कहीं और ले जाया जा रहा है। स्थानीय नागरिक मेगन सावायद्रा ने कहा,
मैं कुल्डे सैक में रहता हूँ और मेरे सारे पड़ोसी इस वक्त एक ही काम कर रहे हैं। सभी कारों के दरवाजे और डिक्कियाँ खुली हैं और हर कोई जरूरी सामान लेकर यहाँ से निकल रहे हैं।
झील से पानी को तेजी से निकाला जा रहा है और अधिकारियों को इसके जरिए पानी का दबाव कुछ कम करने में सफलता मिली है। कैलिफोर्निया के दमकल विभाग के अधिकारी केविन लॉसन ने बताया कि हजारों लोगों की जान जोखिम में डालने की बजाय उन्हें यहां से हटाने का फैसला किया गया है।
अगर इसे नहीं संभाला गया और हमने आशंकाओं को ठीक ढंग से समझकर इसे कम करने के लिए ठीक से काम नहीं किया, तो लगभग 30 फुट ऊंची पानी की एक दीवार झील से बाहर निकलेगी। इसीलिए हमने उपयुक्त कदम उठाए हैं और लोगों को यहां से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इंजीनियरों का दल पानी के रिसाव से पैदा हुई बड़ी सी छेद को भरने की कोशिश में है। हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े पत्थर यहाँ गिराए जा रहे हैं। एक समय तो ऐसी आशंका बन गई थी कि लाखों टन पानी यहाँ से बह निकलेगा, लेकिन झील का पानी अब खतरे के निशान से करीब 4 इंच नीचे आ गया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर जेरी ब्राउन ने कहा है कि स्थिति जटिल है और लगातार बदल रही है। कैलिफोर्निया के 23,000 नेशनल गार्ड को इलाके में तैनाती के लिए तैयार कर दिया गया है। कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के प्रमुख डेविड बॉल्डविन ने कहा,
पिछली बार हमने कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के सभी लोगों को सतर्क नहीं किया था जैसे आज किया है। वैसा तो सिर्फ 1992 के दंगों के समय ही हुआ था। हमने सभी गार्ड को तैनात नहीं किया है, लेकिन उन्हें इस बात के लिए तैयार रहने के लिए कहा है कि जैसे ही जरूरत हो नेशनल गार्ड के 23,000 सैनिक और एयरमैन मौके पर पहुँच जाए।
ओरोविल डैम के 50 साल के इतिहास में पहली बार इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। कैलिफोर्निया में ज़्यादातर सूखा रहता है, लेकिन इस बार भारी बारिश और बर्फबारी के कारण झीलों और नहरों में पानी का स्तर ऊपर चला गया है।
अमेरिका की सबसे लंबी बांध खतरे की जद में, रिपोर्ट सुना रहे थे फैसल मोहम्मद अली। तमिलनाडु के राज्यपाल सी विद्यासागर राव, एआईडीएमके के प्रमुख शशिकला और अंतरिम मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम में से किसे राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए चुनेंगे? गुरुवार को दोनों नेताओं के मुख्यमंत्री पद के लिए अपने दावे पेश करने के बाद से राज्यपाल ने अब तक अपना रुख सामने नहीं रखा है। ऐसे में संविधान क्या कहता है, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने बात की भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी और मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस के चंद्रू से। दिव्या आर्य इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो स्वागत है आपका। पहला सवाल ये था कि क्या राज्यपाल शशिकला को शपथ दिलाने के लिए बाध्य हैं, क्या कहा उन लोगों ने?
निखिल, इस पर दोनों की राय एकदम बटी हुई थी। सोली सोराब जी ने कहा कि राज्यपाल ने शपथ दिलाने से मना तो किया ही नहीं है, सिर्फ उसको मुलतवी किया है। उनकी इसके पीछे समझ ये है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला जो जयललिता और शशिकला दोनों के खिलाफ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और उन्हें उसका इंतजार है। सोली सोराब जी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शशिकला करप्शन की यानी भ्रष्टाचार की दोषी पाई जाती हैं, तो उनके ऊपर ये नियम लागू होगा कि 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकती, ना ही कोई सरकारी पद संभाल सकती हैं। तो ऐसे में वो ऑटोमेटिकली मुख्यमंत्री पद से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी, लेकिन ये तय करने के लिए उस फैसले का इंतजार करना होगा। लेकिन इससे एकदम उलट के चंद्रू ने कहा कि फैसला लेने में एक भी मिनट की देरी करना असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल के पास किसी और सूरत में कोई हक नहीं है कि वो बिना सरकार के राज्य पर शासन करे।
इट कैन फाइंड हर गिल्टी, इट कैन फाइंड हर इनोसेंट, और टू जजेस मे डिसएग्री।
के चंद्रू कह रहे थे कि अदालत का फैसला किसी भी दिशा में जा सकता है, वो उनको दोषी भी करार सकता है शशिकला को, उनको इनोसेंट भी मान सकता है, और दो जज की जो अभी बेंच है अगर उसमें असहमति हो तो वो एक बड़ी बेंच के लिए रेफर भी किया जा सकता है। तो ऐसे में सिर्फ फैसले के इंतजार में सरकार को ना बनाया जाए ये बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है।
लेकिन दूसरा सवाल ये है कि क्या ओ पनीर सेल्वम को मौका दिया जाना चाहिए?
इसमें इन दोनों की राय बल्कि सहमत थी। इनका कहना था कि पनीर सेल्वम, सोली सराब जी ने कहा कि जब एक बार इस्तीफा मंजूर हो गया पनीर सेल्वम जी का, तो उसके बाद ये दावा करना कि उन्होंने वो दबाव में दिया था, इसके कोई मायने नहीं है। संविधान में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जिसके तहत आप अपने इस्तीफे को वापस ले सकें। के चंद्रू ने कहा,
ही रिजाइंड एज अ चीफ मिनिस्टर, ही डिड नॉट सीक फॉर एनी रीइलेक्शन, ही ओनली मूव्ड शशिकला'स नॉमिनेशन इन द।
के चंद्रू कह रहे थे कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो दोबारा मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ना चाहते हैं, उन्होंने सीधे तौर पे शशिकला जी का नाम आगे किया, तो चीजें बहुत ही साफ हैं। और ऐसे में ये दावा करना कि उन पर दबाव बनाया गया था ये सही नहीं है।
तो अब ये सवाल है कि आखिर राज्य में मुख्यमंत्री कैसे चुना जाएगा?
देखिए, सोली सराब जी का कहना था कि एक ही तरीका है। सोली सराब जी कह रहे थे कि संविधान को फॉलो करना, संविधान को मानना ही राज्यपाल के सामने एकमात्र रास्ता है, जिसके तहत सदन में ही वोटिंग के जरिए, एक विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के जरिए ये तय किया जा सकता है कि किसके पास विधायकों का समर्थन है। के चंद्रू ने भी इस बात से पूरे तरीके से सहमति जताई। और यहाँ पे मैं ये बता दूं कि तमिलनाडु विधानसभा में 235 सदस्य हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए 118 विधायकों का समर्थन हासिल करना जरूरी है।
बहुत शुक्रिया दिव्या आर्य इस पूरी जानकारी के लिए। ये तो थी तमिलनाडु की बात, और अब बात करते हैं चुनावों की। उत्तराखंड में आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम गया। यहां की सभी 70 सीटों के लिए 15 फरवरी को मतदान होना है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है, और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के लिए आरोप लगाती हैं। हालत यह है कि अलग राज्य बनने के बाद से यहां एनडी तिवारी के अलावा ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। तो कैसा रहा है अब तक का चुनाव प्रचार का अभियान? देहरादून से शिव जोशी हमारे साथ हैं। शिव, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राज्य में विकास, स्वच्छ प्रशासन के अलावा पहाड़ी इलाकों की अनदेखी भी एक प्रमुख मुद्दा रही है, जैसा कि आपकी रिपोर्टों से हमें पता चलता रहा है। बहुत से लोग हैं जो दोनों पार्टियों से नाराज हैं, ऐसे में उनके पास क्या विकल्प रह जाता है?
जी निखिल, जाहिर है लगातार यहाँ पर, जैसे कि आपने बताया भी कि जो पिछले तीन चुनाव हुए हैं 2002 से लेकर और ये चौथा चुनाव है इस समय, तो कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से सत्ता में आती रही हैं, लेकिन जो लोगों की, जो खासकर जो पहाड़ी आबादी है, उसकी जो आकांक्षाएं थी, एस्पिरेशंस थी, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ छल हुआ है। जैसा कि वो पहाड़ी राज्य से चाहते थे, वो राज्य, उस तरह का राज्य उनको नहीं मिल पाया है जो कि उनकी पहचान को बनाए रख पाता और कम से कम उनके लिए पहाड़ में पलायन की समस्या को रोक पाता।
शिव, तो क्या शिव, शिव मैं ये कह रहा था कि क्या ये जो चुनाव था, चुनाव का जो पूरा प्रचार अभियान था, उसमें आपको लगा कि लोगों की ये भावना को राजनीतिक पार्टी जो है तवज्जो दे रहे हैं और चुनाव की जो मुहिम है वो कुछ उस दिशा में बढ़ रही है?
जी बेशक, भाषण तो जरूर हुए। अगर हम एक लिहाज से देखें, अगर हम कांग्रेस और बीजेपी को ही देखें, अगर निखिल, तो पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई प्रधानमंत्री सुदूर पिथौरागढ़ में जाकर रैली कर रहा हो, या एक पार्टी का अध्यक्ष घनसा टेहरी का, जो दूरस्थ इलाका है घनसाली, वहां पर जाकर जनसभा कर रहा हो। तो बीजेपी ने इस बार ये काम जरूर किए हैं, पहाड़ों की बात जरूर की है, लेकिन लोगों में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है कि सत्ता में आने के बाद, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, इन दोनों दलों ने ऐसा कुछ काम नहीं किया है जिससे कि पहाड़ की जनता अपने सरोकारों का काम कह सके, सिवाय कि यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता के अलावा और लगातार कुर्सी की खींचतान के अलावा यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ होगा निखिल, उसके अलावा यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, ये उनको लगता है पहाड़ की जनता को। और इसीलिए कई लोग ये भी बोलने के लिए तैयार हैं कि अगर काश यहाँ पर कोई ऐसा तीसरा विकल्प मजबूत हो पाता, चाहे वो क्षेत्रीय दल होते, चाहे वो वामपंथी दल होते, तो उनका वोट होने जाता। और इस बार ऐसा होगा चाहे भले ही वो उनके वोट प्रतिशत में ऐसा लगता है इस बार निखिल कि शायद पिछले बार के चुनावों का मुकाबले थोड़ा सा इजाफा हमें देखने को मिल सकता है।
शिव जोशी देहरादून से बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आपसे कल सुबह के कार्यक्रम में फिर बात होगी। और अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव का रंग जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। पहले चरण का मतदान होने के बाद चुनाव प्रचार में और तेजी आ गई है। दूसरे चरण में 11 जिलों के 67 सीटों के लिए 15 फरवरी यानी बुधवार को ही मतदान होगा। इसके लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। सभी पार्टियों के प्रमुख नेता एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं और हमारे सहयोगी इन रैलियों के जरिए जनता का मूड भांपने की कोशिश में हैं। इटावा जिले के पास जसवंत नगर में आज बीएसपी प्रमुख मायावती की रैली थी और हमारे सहयोगी जुबैर अहमद भी वहां मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। जुबैर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी रैली को कवर किया आपने, मायावती वहां मौजूद थी, आप उस इलाके में थे। बताइए क्या कुछ आज देखने को मिला, क्या कुछ भांप सके हैं आप लोगों के मूड के बारे में?
देखिए निखिल, जहाँ से अभी मैं आया हूँ वहाँ से तो निकल पड़ा हूँ इटावा से। जब मैं वहाँ 3 दिनों तक था तो हर पार्टी की रैली को मैंने कवर किया, लेकिन मायावती की जो दोपहर को रैली हुई उसमें जितने लोग आए थे उतनी दूसरी पार्टियों की रैली में मैंने नहीं देखा। सबसे पहली बात तो ये है, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मैदान खचाखच भरा हुआ है और आसपास के गांव के और शहर के लोग जो है उमट पड़े हैं वहाँ पर। मायावती आई भी नहीं थी तब भी पूरा मैदान भर गया था और जो मेन रोड है वहाँ पे भी लोग आ गए थे और बहुत उत्साह था उन लोगों के अंदर। और दिलचस्प बात यह है निखिल कि अब तक जो मैंने एक हफ्ते में जितनी भी रैलियां कवर की हैं उसमें मर्द हमें बहुत अधिक संख्या में दिखे, महिलाएं बहुत कम दिखी मुझे, लेकिन इस सभा में महिलाएं उतनी ही थी जितने मर्द थे। और कुछ महिलाओं से मैंने बात की कि भाई आप उपस्थित हैं और मायावती से मिलना है, क्या अपेक्षा रखती हैं उनसे आप? उन्होंने कहा
मायावती जी से हमें बहुत लाभ है और मायावती जी को हम लोग वोट देंगे। मायावती हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है।
यही कहते हैं कि मायावती साहबे को सब जन की उनकी जय जयकार, वही माँ बहनन को सबको सुख शांति दे। में मायावती हम सब लोग हैं उनके पीछे, तो हमारे पीछे मायावती।
उनके राज में ना तो यह गुंडागर्दी होती है, वो सारे अधिकारी कर्मचारी उनके उसमें कड़क रहते हैं। और जो हमारे बच्चों का भविष्य सबसे ज्यादा ये बनता है, क्योंकि ना तो उनके राज में नकल होती है और जो हमारे बच्चे आगे चल के जो बढ़ेंगे और आगे चल के उनको जो भविष्य होगा वो अच्छा हो। हमारी नजर में तो हमें लगता है कि हमारी बहन जी ने जो कुछ भी किया है जितने अच्छा दिन के लिए उनको किया वो अच्छा ही किया है, इसीलिए हमारी इतनी भीड़ है उनके लिए।
जुबैर, महिलाओं की आवाज़ आपने भेजी थी और हम सब हमारे आपके जरिए सब लोगों ने सुनी। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस मायावती की रैली से ठीक पहले आप जो है वो कुछ उन इलाकों का दौरा कर रहे थे जहां परसों चुनाव होने हैं, वहां पर किस तरह की नई बात कोई देखी आपने या जो ट्रेंड चल रहे हैं वो कुछ क्या नज़र आया आपको?
देखिए, जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया था तो उन इलाकों में ही सफ़र शुरू किया था जहाँ पे परसों चुनाव होने जा रहे हैं। तो शुरू के दिनों में ऐसा लगा कि ये एक 3 तरफा मुकाबला है और तीनों जो बसपा और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दरमियान कड़ा मुकाबला है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे लोगों से और गांव के अंदर बिल्कुल दूर दराज इलाकों में लोगों से बातें की तो ऐसा उभर कर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मुकाबला अगर मुस्लिम वोट बट गया तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा इसका हो सकता है, लेकिन हमने ये भी देखा कि मुसलमानों के बीच में ये कोशिश चल रही है कि वोट कटने ना दें, बटने ना दें, और जहां पर बसपा के उम्मीदवार मजबूत हो वहां उनको दें, जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मजबूत हैं उन्हें वोट डालें। तो ये मूड बदलता हुआ थोड़ा सा मुझे नजर आया।
जी,
दूसरी तरफ मैंने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो अपना सपोर्ट बेस है उम्मीदवार वहीं ज्यादा जा रहे हैं और उनको उम्मीद है कि वो पूरी संख्या में उन्हें वोट डालेंगे और अगर मुस्लिम वोट बटा तो उनको उससे फायदा होगा, ये खुद उन्होंने कई उदाहरण हमें ऐसा बताया।
जी जुबैर अहमद, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये है उन चुनावों का हाल, उन इलाकों का हाल जहां परसों मतदान होना है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती करीब 20 साल पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक ग्रामीण क्षेत्र हरोरा विधानसभा से जीतकर विधायक बनी। इसके 6 महीने बाद मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। इस दौर में हरोरा में विकास का खूब काम हुआ। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी की पकड़ भी बन गई, पर 20 साल बाद कितने बदले हैं वहाँ के हालात, यही देखने पहुंची बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य।
सरपट दौड़ती सड़कें, लहलहाती सरसों की फसल और गन्ने के खेत, जब मैं हरोरा विधानसभा पहुंची, जो साल 2008 में परिसीमन के बाद सहारनपुर देहात बन गई है, तो उसकी पहली तस्वीर ऐसी ही थी। पर पहली तस्वीर में तो अभी कई रंग भरने और फीके होने बाकी थे।
जिस टाइम मायावती मुख्यमंत्री थी, यहाँ पर बिजली घर भी बने, स्वास्थ्य केंद्र भी बने, डिग्री स्कूल भी बने, ये सब आस पास जो बने हुए हैं ये बहुत ही टाइम के बने हुए हैं। 5 साल के बाद तो कोई विकास हुआ ही नहीं
जी। रोजगार तो पहले है, जब आदमी को रोजगार मिलेगा जब भी तो वो पेट भरेगा, जब उससे रोजगार नहीं मिलेगा उसका भूखा रहेगा फिर तो।
यहाँ पे लड़के लड़कियाँ सब कितनी क्लास तक पढ़े होते हैं?
बीए फाइनल।
और फिर क्या जॉब करते हैं?
मिलते नहीं ना जॉब तो क्या जॉब करें, मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाता है। बराबर में मीट फैक्ट्री है, उसमें जाते हैं ज्यादातर।
ये सब मुझे हरोरा गांव के बाहर कुछ पान की दुकानों पर मिले। पास में कई नौजवान और अधेड़ उम्र के आदमी ताश खेल रहे थे। दिन के 11 बजे थे, जब अमूमन ऐसे लोग काम पर होते हैं।
ये सब मजदूर आदमी और इन पर मजदूरी नहीं है, मतलब बेरोजगार हैं सब। देखो इधर कम से कम 100 आदमी बैठे हुए हैं।
ये ग्रामीण इलाका है और उस लिहाज से यहाँ कई सरकारी स्कूल, महिला इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज हैं, जिनकी नींव रखने या शुरू करवाने का श्रेय मायावती को ही दिया जाता है। पर दिक्कत वही रोजगार की। खास लड़कियों के लिए बनाए गए सावित्रीबाई फुले पॉलीटेक्निक में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही हिना मुझे समझाती हैं।
हम चाहते हैं मतलब लोकल में कंपनी हो, हमें प्लेसमेंट यहीं पर ही मिल जाए। हम सहारनपुर में रहते हैं तो सहारनपुर में ही हम चाहेंगे कि हमें यहीं पर जॉब मिले, क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं करती ज़्यादा दूर भेजना।
मायावती इस विधानसभा क्षेत्र से 1996 और फिर 2002 में विधायक बनी थी। उसी दौर में उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी CHC और प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी PHC भी बनवाए। पर इन सेंटर्स में डॉक्टरों की भारी कमी है और आज तक किसी महिला डॉक्टर की नियुक्ति ही नहीं हुई।
करोड़ा स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पे क्या क्या सुविधा मिलती है और क्या नहीं मिलती?
1 रुपए की पर्ची में 50 का नोट सरकार दिया तो बढ़िया दवाइयाँ, नहीं तो कुछ नहीं।
हमारे यहाँ की एक चमारी थी, मेरा रेडा ले गए खुद, वो टक्कर यही लग गई उस पर, बेचारी पर बच्चा होगा, रेडा मेरा टूट गया।
हरोरा के CHC के अधीक्षक डॉक्टर चौधरी ने इन आरोपों से तो इनकार किया, पर माना कि उनके CHC में चिकित्सा की कई सुविधाएं हैं ही नहीं।
नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत सारी कमियाँ हैं, जैसे सारी फैसिल्टी होनी चाहिए, एक्सरे होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, सारे स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर होना चाहिए, जनरल सर्जरी हो, गायनी हो, सारी चीज़ होनी चाहिए।
और बीमारियों की कमी नहीं, गांव में दाखिल हों तो गांव वाले टूटी सड़कें, गंदे पीने के पानी और नालियों की निकासी ना होने जैसी परेशानियों की झड़ी लगा देते हैं।
ना ही कोई नाली बनवाता, ना ही अब कोई कुर्डी खत्तों की है, यहाँ तो सब तो बड़ी दिक्कत है, कोई सी सरकार बन जाओ।
हालांकि ये भी सच है कि मायावती ने अपने कार्यकाल में यहाँ 70 गांवों को अंबेडकर गांव घोषित किया, जिसके बाद उनका काफी विकास हुआ। साल 2003 के उपचुनाव में इस सीट के समाजवादी पार्टी के पास जाने के अलावा पिछले 20 सालों से ये हमेशा बहुजन समाज पार्टी के पास ही रही है। 3.25 लाख मतदाताओं वाले इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 1.25 लाख दलित समुदाय से हैं और उतने ही मुसलमान हैं। मायावती के बाद यहां से बसपा के जगपाल सिंह 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं।
अब हमारी सरकार नहीं है, जब 5 साल हो गए ये समाजवादी पार्टी की सरकार चली और उन्होंने इस क्षेत्र को इग्नोर करने का काम किया।
रात के वक्त काफी इंतजार के बाद एक गांव के प्रधान की घेर में विधायक जगपाल से मुलाकात। जब रोजगार की कमी और गांव के अंदर नालियों की कमी के बारे में पूछा तो बोले,
देखिए ये पॉलिसी तो सरकारों की है, सरकार क्या पॉलिसी बनाएगी उसको आदरणीय बहन जी सब जनता के सामने वो अपनी बात रखने का काम करेंगी।
यानी अगर बसपा सरकार बनाती है उत्तर प्रदेश में तब इस दिशा में कुछ काम हो पाएगा,
ये तो बहन जी बताएंगी।
उनके जवाब को ठीक से सुना और समझा तो लगा कि इस विधानसभा क्षेत्र को विकास के लिए फिर मायावती का ही इंतजार करना पड़ेगा। दिव्या आर्य, BBC हरोड़ा।
चुनाव से जुड़ी खबरें आपको bbchindi.com के पन्ने पर भी उपलब्ध हैं, आप वहां जाकर इन तमाम खबरों को पढ़ सकते हैं। आज सोमवार है, यानी आपकी राय जानने का दिन, और आपकी चिट्ठियां लेकर आ गए हैं राजेश जोशी और मानसी दास।
आपकी राय, नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और मेरे साथ हैं मानसी दास। मानसी जी, आपके पास बहुत सारी चिट्ठियां हैं, पोस्ट कार्ड हैं, ईमेल भी हैं, आप तारीफ से शुरू करना चाहती हैं या शिकायत से?
शुरू करते हैं तारीफों से। बिहार के नवादा से ग्राम पकरी से जयनंदन सिंह वरुण कहते हैं कि 3 फरवरी की शाम को जो प्रसारण हुआ था रिहान फजल का पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति जनरल यहया खान के बारे में, इस विवेचना की उन्होंने तारीफ की है। रिहान फजल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वो कार्यक्रम सुना और पसंद आया। रिहान साहब तो लगातार हर हफ्ते इस तरह के कार्यक्रम करते ही हैं। बस मैं श्रोताओं को ये बता देना चाहता हूँ कि इस हफ्ते शुक्रवार को रिहान साहब चूंकि छुट्टी पे हैं, इसलिए हम उनकी कोई पुरानी विवेचना जो अब भी रिलेवेंट होगी उसका प्रसारण करेंगे।
ये हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से बेफिरल कवि। इनका कहना है कि आज तक इनका नंबर जो है इंडिया बोल कार्यक्रम में मिला नहीं है।
जो इनका नाम बताया, इनका नाम वाकई बेफिरल कवि है।
हाँ, कुछ ऐसा ही
स्पष्ट
है,
पढ़ने में आ नहीं रहा है, मुझे लगता है कवि है ये। इन्होंने कोई कविता भी लिखी है?
कोई कविता तो इन्होंने नहीं लिखी है। यहाँ
जरा मुझे बेफिरल कवि पढ़ रहा हूँ, देखिए कविता जैसा कुछ दिख तो रहा है। बेफेरल को क्यों फेरते हैं, कष्ट बहुत होता है, इंडिया बोल को तौल रहा वर्षों से, हरदम बिजी सुनना खलता है, कौन खिचड़ी पकती है, कौन रसायन आप खाते, हाँ बोलिए नाम बताए। आपने तो बेफेरल कवि की कविता को ही आपने यानी बेफेरल साहब अगर हम आपको इन्हीं नाम से पुकार सकते हैं, पडरौना जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से आपने चिट्ठी लिखी है, पोस्ट कार्ड बहुत सुंदर पोस्ट कार्ड है, थोड़ी सी साफ हैंडराइटिंग में अगर लिखेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। और इंडिया बोल में जहां तक फ़ोन नहीं लगने का सवाल है तो मैं आपसे सिर्फ माफ़ी ही मांग सकता हूं। इतने सारे लोग फ़ोन करते हैं और सबका फ़ोन लग नहीं पाता है। हालांकि आपने अपना मोबाइल नंबर दिया, हम कोशिश करेंगे कि आपके मोबाइल से आपको संपर्क करें।
अमरा है कक्षा 8 से AMU सिटी गर्ल्स स्कूल अलीगढ़ से।
अरे वाह, हमारी बहुत ही नई श्रोता हैं। तो क्या
इनके लिखते हैं? दो खत हैं हमारे पास। पहले खत में इन्होंने लिखा है कि इलेक्शन के माहौल में हर पार्टी नारी सशक्तिकरण की बात कर रही है और BBC से ये निवेदन करती हैं कि लड़कियों की तालीम के लिए लोगों को मीडिया और जागरूक करे।
अमरा, इसी बात पे मैं पहले तो जवाब दे दूं कि आप जब भी अपने अब्बू के साथ अम्मी के साथ दिल्ली आए तो हमारे स्टूडियो जरूर आए। आप 8 में पढ़ती हैं, कक्षा 8 की छात्रा हैं और इतनी मैच्योर, इतनी आपकी सुलझी हुई सोच है, मुझे बहुत खुशी हुई है। दूसरी चिट्ठी इनकी है, पोस्ट कार्ड क्या
दूसरी चिट्ठी है इनकी। निखिल रंजन ने जो प्रस्तुत किया था कार्यक्रम दुनिया जहान, उसके बारे में परमाणु हथियारों पर जो कार्यक्रम था वो इन्हें अच्छा लगा और ये कहती हैं कि ये सोचकर दिल कांप जाता है कि कोई गलती या गलतफहमी हो जाए तो क्या हो।
ये बहुत ही, अमरा मैं दोबारा कहूंगा, सुलझे हुए विचारों की छात्रा है। जैसे कि इन्होंने पहली चिट्ठी में अपने लिखा है कि नारी सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि लड़कियों की तालीम का खर्च सरकार दे। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम अपने आने वाले कार्यक्रमों में जरूर इस मुद्दे को उठा सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको भी दिल्ली बुला करके स्टूडियो में बातचीत में शामिल करें। मुझे लगता है समय बहुत कम है, अगर एक चिट्ठी और ले सके।
मैं
आप,
आपको एक और चिट्ठी,
ईरान के कोई सज्जन हैं, ईरान से एक
ईरान से हैं आसिफ करीम फौलाद जो लिखते हैं जी। इन्होंने ईमेल के जरिए हमको ये भेजा है कि अब यूपी विधानसभा चुनाव का रंग कुछ ऐसा निख रहा है कि आम जन के साथ स्वयं BBC भी उसी रंग में रंग
ही गया है, बिल्कुल रंगना ही है।
तो इनका कहना है कि इनको वांगछी की कहानी, जुबैर साहब और फिर इंडिया बोल, ये सब कार्यक्रम काफी अच्छे लगे।
तो आप फौलाद साहब ईरान में हैं, अपने बारे में कुछ और बताइए, अपने एक लंबी सी चिट्ठी हमें लिखिए और बताइए कि ईरान में आप क्या करते हैं। हिंदी में आपने चिट्ठी लिखी है, हिंदुस्तान से आपका ताल्लुक किस जगह से है, ये सब बताइएगा तो हम अगली बार आपके चिट्ठी को और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। मानसी आप दिखा रही हैं, इशारा कर रही हैं एक और चिट्ठी का, लेकिन समय नहीं है इसलिए मैं चलते चलते श्रोताओं से माफ़ी मांगता हूं जिनकी चिट्ठी शामिल नहीं हुई। और पता बताता हूं, BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर ईमेल लिखना चाहें तो हमें लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk पर। नमस्कार।
और खेल समाचारों में आपको बता दें कि भारत ने बांग्लादेश को इकलौते टेस्ट मैच में हरा दिया है और विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही समय बहुत कम बचा है तो सुन लेते हैं जल्दी से प्रमुख समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक लाहौर के पूर्वी इलाके में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बम धमाका हुआ है। पाकिस्तान स्थित BBC संवाददाता के मुताबिक धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में लाहौर के ट्रैफिक पुलिस के DIG शामिल हैं। इनके अलावा 40 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को देखते हुए हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। ये विरोध प्रदर्शन दवा की बिक्री से संबंधित नए कानून के विरोध में हो रहा था। BBC समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया वात्सल्य राय ने और आज स्टूडियो संभाला है तिलक राज भाटिया ने। इस ब्रेकिंग न्यूज के अलावा और दूसरी खबरें भी हैं bbchindi.com पर, आप वहां पढ़ सकते हैं। निखिल रंजन को यहां दीजिए अनुमति। नमस्कार।